ही फूल है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है।
दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया, गुंचे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया, बादल की तरह झूम के छाने का दिन आया, मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया। जब भी कोई महान चेतना इस धरती पर जन्म लेती है तो सारी सृष्टि उसका स्वागत करती है। मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया, बादल की तरह झूम के गाने का दिन आया, फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया, गूंजे की तरह कली की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया। तो दिखाया है, जब जब महान आत्माएं इस धरा पर आती है, सारी सृष्टि उस चेतना का स्वागत करती है। तो फरिश्ता अर्थात अवतरित आत्मा, यह व्यक्तवाणी है 22 फरवरी 1990 की। तो आज का स्वमान, मैं फरिश्ता कैसा हूँ? अवतरित हूँ, अवतरण हुआ है मेरा। अवतरण अर्थात अवतार शब्द का क्या अर्थ है? अवतार, अवतार अर्थात ऊपर से आना, डिसेंड, प्रागट्य, प्रगट हुआ हूं। जन्म नहीं लिया है, प्रगट होना, कोई विशेष लक्ष्य लेकर के। सदा उड़ती कले में कला में उड़ने वाले फरिश्ता अपने को समझते हो। फरिश्ता कहाँ रहते हैं, फर्श पर या अर्श पर? आप कहाँ रहते हो, अर्श पर रहते हो या नीचे रहते हो? ऊपर से नीचे आते हो ना, क्योंकि आप सभी अवतार हो। कौन हो? अवतार। अवतरित हो, जैसे बाप अवतरित हुए है वो भी अवतार लेता है। आप श्रेष्ठ आत्माएं भी अवतरित हुई हो। किस लिए अवतरित हुई हो? परित्राणाय साधुनात, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए कौन अवतरित हुए हैं? हम। विप्रसंत सुरथे नुहित प्रभुतरी विविध शरीरा, वो भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है। विप्र किसके कल्याण के लिए? ब्राह्मणों के कल्याण। विप्रसंत, विप्रसंत सुरधेनुहित प्रभुधरि विविध शरीरा, ऐसा वर्णन है। आई कम नॉट ऑन माई ओन अकॉर्ड, आई हैव बीन सेंट बाय माई फादर। मैं अपने आप से नहीं आया हूं, मुझे मेरे पिता ने भेजा है। मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इट इज द टेस्टिमनी टू माई फादर। मैं अपने पिता का हस्ताक्षर हूं। क्योंकि आप सभी अवतार हो, अवतरित हो, जैसे बाप अवतरित हुए, आप श्रेष्ठ आत्माएं भी अवतरित हुई हो। ऊपर से नीचे कर्म करने के लिए आती हो, रहने वाले सूक्ष्म वतन या मूल वतन में हो। तो अवतार किस लिए नीचे आते हैं? क्यों आते हैं? मैसेज देने के लिए नीचे आते हैं, लेकिन स्थिति सदा ऊंची रहती है। देह रूपी मिट्टी पृथ्वी पर नहीं रहते, ऊपर रहते। तो आप फरिश्तों की बुद्धि रूपी पाव कहाँ रहना चाहिए? धरती को टच नहीं करना है, और टच किया तो मैले हो जाएंगे। कल कहा ना, मिट्टी में क्या हो जाते हैं? मैले। तो आप सभी परमात्मा के प्यारे हो, सिकिला देहो लाड़ लो। तो धरती पर कैसे पाव रखेंगे? फिर भी रखते हैं, कमाल है। पहले के जो राजाएं होते थे वो दूसरों की धरती पर कभी पाव नहीं रखते थे, अपनी धरती पर पाव रखते। तो आप भी पुरानी दुनिया में क्यों पाव रखते हो? क्यों रखते हो बताओ कारण? अपना राज्य जब आएगा तब राज्य करना, ऐसे रहते हो ना। कभी मिट्टी में पाव रखने का दिल तो नहीं होता है? कितना जन्म धरती की टेस्ट की, कैसी है धरती? बहुत स्वादिष्ट लगती है, उसी को खाने की इच्छा है। अभी तो अपना घर राज्य दोनों याद है ना। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम फरिश्ते हैं, फरिश्ते सदैव लाइट में दिखाते, चमकता हुआ दिखाते। आप भी चमकते हुए सितारे हो, फरिश्ते हो। यह नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है? जब एक बार अनुभव करके देख लिया, क्या अनुभव करके देख लिया, क्या अनुभव करके देख लिया, क्या अनुभव करके देख लिया? अनुभव कर लिया तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। तो कौन सा अनुभव किया? जब एक बार अनुभव करके देख लिया, यह सब असार संसार है, विष है। क्या है ये? कौन सा विष? हलाहल विष। कौन सा विष? बहुत खतरनाक विष है। एक्सपायरी डेट हो चुकी है इस विष की, और ज्यादा खतरनाक हो गया है। विषधर नाग है संसार, हाथ मत लगाना, डस देगा। साइनाइड। तो यह क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या है और कौन है? बाप तो सभी बच्चों के प्रति यह समझते हैं कि एक एक बच्चा बाप का अति प्यारा और दुनिया से न्यारा है। आप बच्चों के लिए भी प्यारे थे, प्यारा बाप है। बाप के सिवा और कोई पास है क्या? नहीं। तो बाप का क्वेश्चन उठता है कि बताओ वह कौन है? बाप भी देखे ना, कौन है जो बच्चों को खींच लेता है? मेरे बच्चों को किडनैप करके ले जाने वाला कौन है? तो सदा याद रखना कि हम फरिश्ते अवतरित हुई आत्मा है, ब्राह्मण आत्मा है, शूद्र आत्मा तो खत्म हो गई, द्विजो नया जन्म है। शूद्र आत्मा दो आत्माएं थी, एक मर गई, उसे मार भी दिया गया, जला भी दिया गया। वो जो कल थी वो मर गई और जल गई। अब तुम दूसरे हो, नए हो, शूद्रपन के संसार का अंश भी नहीं। वो संसार कौन सा था? शूद्र संसार था जिसमें रहते थे। अभी नई ब्राह्मण आत्मा हो। ये कैसा सोमान है? मैं कैसी आत्मा हूं? नई नवेली, अवतरित हुई आत्मा हूं। यह खुशी है ना? तो 22 फरवरी 1990, तो आज क्या याद रखेंगे? मैं कौन हूं? अवतरित आत्मा हूं। मैं कहां से आई हूं? ऊपर से आई हूं। किस लिए आया हूं? कुछ करने के लिए आया हूं संसार में, क्रांति लाने के लिए। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि जब वो संसार की कोई महान आत्मा ऊपर से आती है, वो एक अवतार प्रकट लेता है तो क्रांति लाता है। इतनी सारी अवतार, इतने सारे अवतार प्रकट हो जाएंगे तो कैसी क्रांति आएगी? महाक्रांति। ओम शांति 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 से ओम क्रांति 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 होगी। तो अवतारवाद, वेदों में अवतारों की कोई चर्चा नहीं है। पोस्ट वैदिक पीरियड में ये अवतार का कॉन्सेप्ट निकला है, उसमें भी छठी शताब्दी में। पुराणों में वेदों, पुराणों में अवतार का वर्णन आया है। उसके बाद में नए नए धर्म की स्थापना हुई, धर्मों की स्थापना हुई, और हर धर्म में कहीं ना कहीं ये अवतारवाद है। गरुड़ पुराण में 10 अवतार लिखे हैं। सिक्किज्म 24 अवतारों की बात करता है विष्णु के। भागवत में 22 अवतारों की चर्चा है, और हर एक के अवतार है। विष्णु के अवतार, शक्ति के अवतार, शिव के अवतार, गणेश के अवतार, हनुमान जी के भी अवतार है। हिंदू धर्म सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी धर्मों में इतने अवतार नहीं है। परंतु इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, इस एक डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। यह आपको बहुत काम आएगा दूसरों को समझाने के लिए। सारे धर्म जो संसार में है उसको किस तरह विभाजित किए गए, सम टोटल, सारे के सारे धर्म। धर्मों को 2 भाग में विभाजित किया, एक सिमेटिक रिलीजन, नॉन सेमेटिक रिलीजन। सेमेटिक रिलीजन अर्थात क्रिश्चियनिटी में, या उधर के जो धर्म है, इब्राहिमिक रिलीजन जो है, उसमें शेम नाम का एक व्यक्ति था, उसके जो भी वंशज है उसे सेमेटिक रिलीजन कहा जाता है। उसमें 3 आते हैं। सबसे पहला क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। ये 3 जो धर्म है इन्हें कहा जाता है सेमेटिक रिलीजन्स। फिर है नॉन सेमेटिक रिलीजन्स, ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे ये 3 धर्म मुख्य है। इन 3 धर्मों में अवतारों की चर्चा नहीं है। किसकी चर्चा है? पैगंबरों की, पयंबरों की चर्चा है, जो ईश्वर पयंबर भेजता है, अपना मैसेंजर भेजता है, या फरिश्तों की चर्चा है। मैसेंजर और फरिश्ते, इन 2 चीज़ों की चर्चा यहाँ है। तो क्रिश्चियनिटी में जैसे भगवान ने अपना प्रॉफिट भेजा जीजस, पर जीजस एक मात्र नहीं है, उसके पहले मोजेस हुआ, उसके पहले कितने सारे हुए, जोसेफ हुआ, डेविड हुआ, ये सब भगवान के पैगंबर है। भगवान खुद नहीं आते, भगवान इधर आते अपने इधर भगवान अपने भेजता है। इस्लाम में भी अंतिम पैगंबर जो कहा गया है, और यहूदी धर्म मोजेस। तो 3 धर्म स्थापक है यहाँ पर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर और यहूदी धर्म। वैसे इन 3 ही धर्म का एक ही पिता कहा गया है, अब्राहम। इसलिए इन रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है। तो इसको कहते हैं सेमेटिक रिलीजन्स। दूसरे हैं नॉन सेमेटिक रिलीजन्स। नॉन सेमेटिक रिलीजन्स को 2 भागों में विभाजित किया है, आर्य और अनार्य, आर्यन रिलीजन और नॉन आर्यन रिलीजन। आर्य रिलीजन में फिर 2 भाग है, वैदिक और नॉन वैदिक। वैदिक जो आर्य, आर्य और वैदिक और नॉन सेमेटिक, इसको कहते हैं हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म, इसको हिंदू धर्म, जो कि गलत शब्द है, मिसनोमर है। तो आर्य और, आर्य किस में विभाजित हुआ है? वैदिक और नॉन वैदिक में, वैदिक में हिंदू, नॉन वैदिक में बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और जोरास्ट्रिज्म अर्थात पारसी धर्म। ये है तो आर्य धर्म भारत के ही है, परंतु नॉन वैदिक, वेदों को नहीं मानते, वेद इनकी आधारशिला नहीं है। बुद्धिज्म जैनिज्म एक साथ, सिखिज्म उसी तरह पारसी। बुद्धिज्म भगवान के विषय में कुछ भी नहीं कहता, साइलेंट है, जरूरत ही नहीं है। बुद्ध से पूछा क्या भगवान है, उसने कहा होगा, क्या भगवान नहीं है, उसने कहा नहीं होगा, कुछ तो बताओ आप क्या मानते हो, है या नहीं है, क्लियर बताओ। बुद्ध कहते हैं वो जान के तुम क्या करोगे, पहले ये काम करो, वाणी पर संयम रखो, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, सम्यक भोजन, इन सब पर काम करो, अपने आप वो अगर है तो तुमको तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैनिज्म भी भगवान के विषय में कुछ भी नहीं बोलता, साइलेंट है। सिखिज्म वो हिंदू मुसलमान के जो कुछ चल रहा था उसके बीच का एक मार्ग निकला है। पारसी जिसमें भगवान को अहुरा माजडा कहा गया है, ये भगवान को मानता है, आग को मानते हैं ये लोग पारसी, तो इन्हें कहा जाता है नॉन वैदिक रिलीजन। यहाँ अवतारवाद नहीं है, अवतारवाद कहाँ है, यहाँ पर हिंदुइज्म में। और वो सबसे ज़्यादा कब आया, भगवद्गीता, भगवद्गीता आधारशिला है अवतारवाद की, क्योंकि पहली बार ऐसा वाक्य भगवद्गीता में ही आया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानी होगी, अधर्म जब ऊपर होगा तब तब उस कालखंड में मैं प्रकट लूंगा, मैं इस संसार में अवतार लूंगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ है, तो ये अवतारवाद है। उसके बाद में आते हैं नॉन सेमिटिक में नॉन आर्यन रिलीजन, नॉन सेमिटिक पर आर्य वाले नहीं है वो, नॉन आर्यन, उसमें कॉन्फ्यूसियज्म, टाओइज्म और शिंटोइज्म, उसमें से ये जो पहले दो है, कॉन्फ्यूसियस नाम का प्रोफेट था उसके द्वारा जो स्थापित हुआ, और टाओइज्म, ये दोनों चाइना के हैं, और जो शिंटोइज्म है वो जापान का है। तो धर्मों का इस तरह से विभाजन है, ये डायग्राम को याद रखना, काम आएगा बहुत। धर्म को दो भागों में विभाजित किया, सेमेटिक और नॉन सेमेटिक। सेमेटिक में ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म। नॉन सेमेटिक में आर्य और अनार्य। आर्यों में फिर दो, वैदिक और नॉन वैदिक। वैदिक में हिंदुइज्म जो वेदों को मानता है, और वेदों को क्या कहता है वो, वेद कैसे अपौरुषीय है, प्रकट हुए है वो वेद, किसने लिखे नहीं है, ऐसा मानता है। और फिर वेदों में भी दो भाग है, स्मृतियां है और श्रुतियां है, स्मृति और श्रुति, एक है चार वेद और फिर है पुराण सारे। और सारी गड़बड़ कहां से चालू हुई, वहां पुराणों से, क्योंकि ढेर सारे पुराण लिखे गए, ढेर सारे पुराण, और उसमें फिर बहुत सारी बातें हैं। पर फिर भी वेदों में चर्चा है कि परमात्मा जो है वो न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, यजुर्वेद, उसकी प्रतिमा हो ही नहीं सकती, निराकार का वर्णन है बार बार। पर जैसे जैसे अवतारवाद आने लगा तो अवतारवाद में ढेर सारे अवतार आने लगे, और भारत में इस समय हर 100 किलोमीटर में एक व्यक्ति है, एक मंदिर है, ये कौन है, ये अवतार है, किसके, उसके, वो कौन थे, वो उसके अवतार, वो उसके अवतार, वो उसके अवतार, और लोग उसकी पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, तो ढेर सारे अवतार ही अवतार निकल पड़े हैं। जिसको देखो वो कहता है मैं ही अवतार हूं। फिर है नॉन वैदिक, नॉन वैदिक में बुद्धिज्म, भगवान से कोई मतलब नहीं है। सिखिज्म, एक ओंकार, वो एक है बस, और उसको तक पहुंचने की विधि क्या है, दशम, ये जो 10 गुरु है या जो गुरु ग्रंथ साहिब है, बस वही सब कुछ है। जैनिज्म, ये जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर तो शुरुआत से थे, और जैनों की परिभाषा कुछ और ही है, जैनों की परिभाषा में तो श्री कृष्ण को भी नर्क दिया गया है, 24 तीर्थंकर, अंतिम महावीर, पारसी अहुरा मास्टर, ये नॉन वैदिक है। फिर आओ नॉन आर्यन में, ये बाहर के चाइना और जापान में जो निकले, जो हम अपनी कोर्स बुक में कहते हैं ना कि वो लोग भी क्या करते हैं, गोल आकार का एक रखते हैं और उस पर फोकस करते हैं। शिंटोइज्म जापान, कॉन्फ्यूसिज्म, टाओइज्म, ये सब निकले। तो मैं कौन हूँ? अवतार। तो अवतारवाद कहाँ आता है? हिंदुइज्म। हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं है, पर नाम दिया गया। ये सब के अपने अपने धर्म स्थापक है। हिंदू से पूछो कि तुम्हारा धर्म स्थापक कौन है, राम जी भी है, कृष्ण भी है, शंकर जी भी है, विष्णु भी है, सब है। इनके अपने अपने फिक्स्ड है, इधर कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे अनक्लियर जो हिस्ट्री है वो है हिंदुज़म की। कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, कहाँ चालू हुआ, कैसे वो अलग अलग कहते हैं। भक्ति तो 8वीं शताब्दी में चालू हुई, उसके पहले 8वीं शताब्दी से पहले कोई मंदिर नहीं थे श्री कृष्ण के और राधे के। जो मंदिर थे केवल शिवलिंग था, बस। चाणक्य में दिखाया है शिवलिंग, कृष्ण राधे। ये जो भक्ति चालू हुई, ये पुराणों की वजह से चालू हुई, पुराणों में सब आया। उसमें भी ये जो महाभारत और रामायण लिखा गया, उसमें भी कृष्ण की जो लीलाएं दिखाई गई, वहां से ही मुख्य भक्ति चालू हुई। तो ये इतिहास है धर्मों का, रिलीजन्स। अवतार अर्थात उसे क्या क्या याद रहता है। और अवतार को अच्छे से अगर समझना है तो सबसे अच्छा जीवन अवतारवाद के लिए है कृष्ण का जीवन, जो भक्ति में दिखाया है। कर्ण कृष्ण से कहता है, मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, मेरा क्या दोष, बताओ मेरा क्या दोष है। दूसरा, द्रोणाचार्य के पास गया, उसने मना कर दिया मुझे सिखाने से, मेरा क्या दोष। तीसरा, परशुराम के पास गया, उसने सिखाया तो, पर जब उसे पता चला मैं क्षत्रिय हूं, शाप दे दिया कि तुम निर्णायक घड़ी में सब भूल जाओगे। एक गाय को गलती से मैंने मार दिया, उसके मालिक ने मुझे शाप दे दिया, मेरा क्या दोष, गलती से मारी थी मैंने। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, मेरा क्या दोष, केवल मैं सूत पुत्र हूं इसलिए। कुंती मेरे पास आती है, और अपने कब आती है, लास्ट में, वो भी किस लिए, अपने बेटों को बचाने के लिए। सातवा, तो मैं जो दुर्योधन से मैत्री, ऐसे समय में दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया है, तो हे केशव बताओ कि मेरी क्या गलती है, क्या मैं दुर्योधन का पक्ष नहीं लूं। अच्छा तर्क है कर्ण का। श्री कृष्ण का उत्तर, मेरा जब जन्म लिया तो मैं जेल में था। और जन्मते ही मुझे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। दूसरा, बचपन से ही मुझे मारने के षड्यंत्र बनाए गए, जबकि तुम योद्धा बने, तुम्हें तलवार चलाना सिखाया गया। मैं क्या कर रहा था, बांसुरी, गाय, गोबर, घी, इसमें लगा हुआ था। मुझे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला, तुमको कैसे मिल रहा था, वैसे मुझे कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं सांदीपानी जी के आश्रम में गया, तब तो मेरी उम्र ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो चुकी थी, तब तक तुम तो सब कुछ सीख चुके थे, मैं तब गया। फिर उसके बाद में तुम्हारी शादी तुम्हारी चॉइस से हुई, मेरी तो हुई नहीं, जिसकी जो मेरी चॉइस थी वो तो मिली नहीं। बाकी मिल गए, और उसमें भी वो सब, उनका उद्धार करने के लिए मुझे उनकी उनसे शादी करनी पड़ी। उसके बाद यदि तुम जीतते हो, यदि कौरव जीतते हो, तो सारा श्रेय किसका होगा, तुम्हारा। और यदि पांडव जीतते हैं तो सारा श्रेय मेरा नहीं होगा, पांडवों का होगा। और मुझे तो कहा जाएगा कि ये जो सारी मृत्यु हुई उसके कारण तुम हो, और लोगों ने हमेशा मुझे अपने दुखों का कारण बताया है। गोकुल में भी था, तो जब भी झगड़े होते थे सारे उपद्रव की बीज जड़ कौन है? मैं, बीज मैं ही था। तो अब तुम बताओ कर्ण, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ या मेरे साथ? अन्याय किसी के साथ नहीं होता है। यह संसार धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, यह धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, यहां तो लड़ना है। तो अवतार अर्थात जैसे कृष्ण है, सबसे पहला जन्म कहाँ हुआ? जेल में। अर्थात अवतार कहाँ जन्मते हैं? जहां प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। अवतार ने क्या किया? बचपन से ही सुखमय जीवन नहीं है, लड़ाई है ही लड़ाई है, कभी पूतना आ रही है, कभी कोई आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहे मतलब तुम अवतार नहीं हो। तो अवतार अर्थात पेपर, कोई कुछ कंस वहां से किसी ना किसी को भेज रहा ही है कंटिन्यूअस। और जितने जितनों को जीतते जाओगे उतनी शक्ति तुम्हारी बढ़ती जाएगी। ये अवतार। अवतार अर्थात तीसरा। अवतार क्या करता है? गोवर्धन पर्वत उठा लेता है। हमें भी इस गोवर्धन पर्वत को उठाना है। और श्रेय किसको देना है? गोप गोपियों को, कि इन्होंने उठाया, जनता को। जनता जनार्दन। गोवर्धन किसने उठाया वास्तव में? कहते हैं ना कृष्ण ने उठाया ना गोप गोपियों ने उठाया। किसने उठाया फिर? राधा की दृष्टि ने उठाया। ऐसा कहते हैं। अवतार अर्थात अपने ही मात पिता का कल्याण करने वाला, अपने ही मात पिता को मुक्त बंधनों से मुक्त करने वाला। अवतार अर्थात जो रणछोड़ दास का टाइटल ले लेता है अपने ऊपर, बार बार भागता है वो, इतना कोई बहुत ग्रेसफुल नहीं है वो टाइटल, पर वो ले लेता है अपने ऊपर। अच्छी बातें हुई तो दूसरे, कुछ खराब हुआ तो मैं। ये अवतार की निशानी है। और आगे बढ़ो। अवतार अर्थात सब कुछ जानता है फिर भी वो संदीपानी के ऋषि के आश्रम में जा रहा है। किस लिए? सीखने के लिए। श्री कृष्ण को सीखने की जरूरत है क्या? तुलसीदास कहता है श्री राम जी जा रहे विश्वामित्र के पास या वशिष्ठ के पास सीखने। जाके सहज श्वास श्रुतिचारी ते प्रभु पड़ी यह कौतुक भारी। जिसके सहज श्वास श्रुति, श्रुति अर्थात अभी जो बताया ना, श्रुति और स्मृति चार वेद जिसके श्वास है, ते प्रभु पड़ी यह कौतुक भारी। वो लीलाएं करता है। तो राम है पुरुषोत्तम, लीला मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। तो अवतार अर्थात जो लीलाएं करता है उसके लिए संसार क्या है? खेल है। सारे पूरे महाभारत में कृष्ण को कभी दुखी होते देखा क्या? पूरे महाभारत में कहीं दुखी नहीं हो। कुछ भी हो जाए गांधारी शाप दे देती है उसको कि तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा, जैसे तुमने मेरा कुल नष्ट किया तुम भी नष्ट हो जाओगे तुम्हारे कुल सहित। उसे भी स्वीकार कर लेता है, शिरोधार्य कर लेता है सहजता से, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। उसके लिए संसार एक खेल है, एक लीला है। फरिश्ता अर्थात हल्का, अवतार अर्थात हल्का, कोई चीज उसे भारी नहीं करती। बाकी सब भारी बने वहां पर, सब सब सब, इधर भी और उधर भी, कौरव भी और पांडव भी, पर एक कृष्ण ही एकमात्र है जो हंसता है, खेल रहा है। उसके लिए सब खेल है, लीलाएं हो रही है। आगे बढ़ो। साथ किसका देता है? धर्म का। वो धर्म के शिविर में है। और जो उसकी संपूर्ण शरण में आ जाता है उसका वो क्या करता है? उसकी वो रक्षा करता है। अवतार अर्थात सारी मानवता की रक्षा करने वाला, सारी मानवता का कल्याण करने वाला। जो कुछ भी उसके साथ हुआ हो रहा वो सब कुछ स्वीकार करता है। वो गाइड है। फरिश्ता अर्थात गाइड, फरिश्ता अर्थात उपराम, अवतार अर्थात ऊपर, नीचे नहीं आता, रोता नहीं है। राम जी तो रोते हुए दिखाया है, पर कृष्ण को कभी रोते हुए दिखाया है क्या? राम को 14 कला संपन्न कहा जाता है, कृष्ण को 16 कला अवतार है। कृष्ण कभी भी रोते हुए नहीं दिखाया है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। राम रो रहे, सबसे पूछे फिर रहे, हे बादलो, हे सब बताओ मुझे, तुमने कहीं सीता को देखा? कृष्ण देखो कैसा अनासक्त है, गोकुल में रहा। जैसे ही गोकुल से बाहर निकला, उसके जीवन में कोई वर्णन ही नहीं है गोकुल का। कभी बांसुरी तक को हाथ नहीं लगाया, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। किसी गोपी गोप गोपिया सब 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 पीछे छूट गए, सबको छोड़ दिया, एक धक से छोड़ दिया, एक सेकंड में वैरागी। फिर कभी याद नहीं, फिर कभी बांसुरी उठाई तक नहीं। नहीं तो कभी कभी एक राउंड लगा के आऊं, यहां से थोड़ी छुट्टी लेके एक मास की थोड़ा बिता के आओ, द्वारिका से छुट्टी एक मास, बलराम तुम संभाल लो, मैं जरा अपने गोप गोपियों को मिल के आता हूँ, मेरे बाल सखा, मेरी बांसुरी, कोई मतलब नहीं है। छोड़ दिया वो, छोड़ दिया अनासक्त। तो अवतार अर्थात कहीं गए, रुके 4 दिन, टाटा बाय बाय, तुम उस मार्ग हम इस मार्ग, सी यू, शिखर पर मिलेंगे। तुम उधर से जाओ, हम इधर से जाएंगे। तो ये अवतार है श्री कृष्ण, संपूर्ण अवतार कहा गया है, संपूर्ण अवतार। उसके लिए सब कुछ खेल है। और एक चीज, कृष्ण अर्थात साक्षी है, वो सब कुछ वही करा रहा है, परंतु फिर भी साक्षी है, जैसे कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी वो नहीं कर रहा है जैसे। और अवतार अर्थात शांति दूत, वो वही तो आता है शांति दूत लेके, शांति प्रस्ताव लेकर कौन आता है? वही आता है युद्ध को रोकने के लिए। परंतु जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तब फिर वो सारथी भी बनता है। सहज भाव, अवतार अर्थात सहज। सत्य तो राम जी बोलते हैं, कृष्ण युक्ति युक्त युक्ति युक्त है वो। वैसे अवतार अर्थात जो सत्य धर्म की स्थापना करने आता है, जो स्वयं सत्य है। भागवत में लिखा है श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, कृष्ण का जन्म नहीं लिखा है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम। सत्य गर्भ में परम सत्य अवतरित हो रहा है। किस लिए सत्य गर्भ में परम सत्य अवतरित हो रहा है? सत्य धर्म की स्थापना के लिए। वैसा राम जी के लिए नहीं कहा गया है, राम जी तो राम जी आ रहे हैं। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, तेही काल जगत विश्रामा, ऐसे समय पर राम प्रकट हो रहे। तो अवतार अर्थात हल्का, अवतार अर्थात अनासक्त, अवतार अर्थात उपराम, अवतार अर्थात साक्षी, अवतार अर्थात विश्व कल्याणी, अवतार अर्थात सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने वाला, अवतार अर्थात सब कुछ करते हुए भी गुप्त है, वो न्यारा है, प्यारा है, डिटैच्ड है। ये अवतार की खूबियां है। कभी दुख नहीं है, कभी रोना नहीं है। और अवतार अर्थात अपने नए नए रूप, द्रौपदी कहती है मेरे बाल जब देखो तब मेरे बाल, मुझे दुर्योधन की छाती का लहू चाहिए। कृष्ण क्या कहता है, ये हर बार अपने बालों को बीच में मत लाया करो। तुम्हारा प्रतिशोध एक तरफ, और दूसरे ये जो भीषण युद्ध होगा, कितने मरेंगे उसमें। तो अवतार अर्थात किसी एक व्यक्ति का नहीं सोचता है, वो सबका सोचता है, और अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट का त्याग करता है। अवतार अर्थात जो धर्म के पक्ष में है, जो धर्म के शिविर में है निरंतर। अवतार अर्थात भगवत गीता कहाँ सुनाई गई है? गुफा में, आश्रम में? नहीं, धर्म से क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे मैदान में जहां पर आवाजें हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, वहां पर। तो अवतार अर्थात इस संसार के कुरुक्षेत्र के बीच में गीता का स्वरूप बन के चलना, खुले मंच पर। तो आज का सामान मैं फरिश्ता हूँ, मैं क्या हूँ, अवतार हूँ। शूद्रपन समाप्त, पुरानी आत्मा मर गई, जल गई, नया जन्म हो गया। और निरंतर ऐसे ही समझना कि मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ, अभी अभी नया नया। मुरली सुनते समय अभी अभी परम धाम से इस तन में आई हूँ, जैसे अभी अभी वो उस ब्रह्मा तन में आया है। मुरली सुनाने, मैं इधर आई हूँ सुनने पढ़ने, मैं अलग हूँ। और एक बात, अवतार, जैसे ही अवतार कार्य पूरा हो जाता है ऐसे चला जाता है जैसे कोई लेना देना नहीं। जैसे भगवान आता है, मुरली सुनाता है और वापस, किसी से कोई लेना देना नहीं। उसी तरह इस संसार में हम भी आए हैं, अवतारिक अपना अवतार कार्य किया और जैसे पूरा हुआ निकल गए। उसके लिए कितनी डिटैचमेंट चाहिए पहले से ही, शुरू से। और अवतार अर्थात निरंतर उसे याद है, क्या याद है, मैं किस लिए आया हूँ। वो कृष्ण गोकुल में है और गोपियों के साथ खेल पाल कर रहा है, परंतु फिर भी उसे स्मृति हमेशा है कि मैं ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ। वो परशुराम उसको कहते हैं ना, वासुदेव माखन बहुत खा लिया, मुरलियाँ बहुत चला ली, रास बहुत खेल ली, अब वो करो जो करने आए थे। ये काम बहुत कर लिया तुमने, अब स्टॉप, अब वो करो जो करने आए थे। हम भी मुरलियाँ बहुत सुन ली, मुरलियाँ बहुत चल सुना ली, क्लासेस बहुत सुन ली, क्लासेस बहुत करा दी, सेवा बहुत कर ली, सेवा बहुत करा दी, पर अब वो कार्य रह गया जो करने आए थे, संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का, बाप समान बनने का। वो कार्य अभी भी पेंडिंग है, वो बाकी है। वो करो जो करने आए थे, इसके लिए निरंतर ये स्मृति, मैं किस लिए आया हूँ, कहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ, किन के बीच आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है, समय कौन सा चल रहा है, सारी बातें निरंतर बुद्धि में याद रहे। तो आज इसी का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। शिवा शंकर।